سامعین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے بات کر کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو سن کر اس وقت یا بعد میں جب بھی آپ سنیں گے آپ کو بھی بہت ہی خوشی ہوگی۔ پاکستان کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے پورے آسٹریلیا کے میڈیا میں بھی دھوم مچی ہوئی، اس کے علاوہ انٹرنیشنل جرنلز میں بھی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کام کیا کیا ہے اس کا تذکرہ میں اب سے کچھ دیر بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مطلوب خوشی، یونیورسٹی آف سڈنی میں لیکچرر بھی ہیں، ڈیٹا سائنس پڑھاتے ہیں، اور ان سے ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے، لیکن جو سب سے اہم موضوع ہے ان کے کام کے ذریعے سے کینسر جیسے مرض کی تشخیص میں بہت زیادہ مدد ملی ہے، کیسے ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اس کا ہم تذکرہ پروگرام کے دوران کرتے رہیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں ڈاکٹر خوشی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔
بہت شکریہ زین صاحب آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے پروگرام میں۔
ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا آپ کچھ اپنے بارے میں پہلے ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے، میرے خیال سے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا ہمارے سننے والوں کے لیے جاننا کہ آپ کب سے آسٹریلیا میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیا کرتے تھے، ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ۔
جی، میں پاکستان سے لاہور سے بلانگ کرتا ہوں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی، اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا، اور پھر اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا 2005 میں۔ تو کچھ سال وہاں پہ رہنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آسٹریلیا آ جائیں، تو اس کے بعد 2006 سے میں آسٹریلیا میں ہوں، اور پھر یہاں پہ کمپیوٹر سائنس ہی مین ہمارا میرا فیلڈ رہا، جس میں کہ ڈفرنٹ قسم کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتا رہا میں۔ لیکن 2008 میں میں نے ویسٹ میڈ ہاسپٹل کو جوائن کیا ایز اے ڈاٹا مینیجر، تو اس وقت میرا یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ کس طرح سے یہ کمپیوٹیشنل ٹولز جو ہیں یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں ڈفرنٹ قسم کی ڈائگنوسس میں اور اس کی کیورمنٹ میں بھی۔ تو میرا اس میں یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ میں اس میں پی ایچ ڈی کروں، ویسٹ میڈ میں سڈنی یونیورسٹی کے ساتھ تھا، پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی، اور یہ پی ایچ ڈی میں نے فنش کی 2015 میں، جس میں کہ میں نے ایسے نئے ٹولز ڈیولپ کیے، ایسے انوویٹیو ویز بنائے جس سے کہ ڈیٹا انالیسز جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا۔ ڈیورنگ دا پی ایچ ڈی بھی ہم نے ایسی ڈسکوریز کی انالیسز کے ساتھ کہ جو کہ بعد میں پروف ہوئی ایکسپیریمنٹلی۔ تو اس کے بعد پی ایچ ڈی کے بعد یہ 2014 سے میں چلڈرنس میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور وہاں پہ ابھی بھی میرا یہی کام ہے کہ ہم ایسے ٹولز اور الگوریدمز بناتے ہیں جو کہ ریسرچرز کو اور جو وہ بینچ بایولوجسٹ ہیں ان کے کام کو آسان کر دیتے ہیں یا آٹومیٹ کر دیتے ہیں، یا ایسی نوول ڈسکوریز کرتے ہیں کہ جو کہ نارمل کنونشنل وے سے، مینوئل وے سے پاسیبل نہیں ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی جو دو ٹولز میں نے امیج پروسیسنگ اور مشین لرننگ کے بنائے ہیں، ایک کا نام ہے میٹ کول اور دوسرا میٹ کوانٹیفائی۔ تو میٹ کول ایک سافٹ ویئر ٹول ہے جو کہ ابھی پبلش ہو چکا ہے نیچر ایک جرنل ہے سائنٹیفک رپورٹس میں، جو کہ آٹومیٹیکلی بہت سارے امیجز کو پروسیس کرتا ہے اور ایسے ڈائگنوز کرتا ہے امیج پروسیسنگ کے ذریعے، جس سے کہ سائنٹسٹ کا کام کینسر ڈسکوری میں اور بہت آسان ہو گیا۔
میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے ہم کچھ چیزیں بریک ڈاؤن کریں، جن میں سے یہ کہ اگر آپ مختصر اس بارے میں یہ بھی بتا سکیں کہ کینسر اگر آپ کی ڈسکوری ہے، آپ کا کام میں مائنس کرتا ہوں، تو کینسر کی ڈسکوری کس طرح کرتے ہیں اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟
یہ کینسر دیکھیں ایک بہت ہی ہیٹروجینیس جو ہے معاوضہ، اس میں بہت سارے جو ہیں وہ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ تو کینسر بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں کینسر کیا ہے کہ انکنٹرولڈ گروتھ ہے آپ کے سیلز کی۔ دیکھیں ہمارے باڈی سیل میں جو ہے نا وہ نارملی سیل ڈیوائڈ ہوتے ہیں، آپ کو کوئی جسم کے کسی حصے پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سیلز ہیں وہ اس کو زخم کو بھر دیتے ہیں اور وہ سیل ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور وہ چیز آپ کی جو مسلز ہیں وہ واپس ریکور ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ پروسیس سٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو کینسر کیا ہے کہ جس میں یہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اب یہ پروسیس کو سٹاپ کرنا ہے، یا وہ اس پروسیس کو، اور کینسر سیل جو ہے وہ مرنا بھی بھول جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈائی نہیں ہوتے، تو وہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی گرو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی جتنے بھی डिफरेंट किस्म के मेथड्स होते हैं कैंसर की क्योरमेंट के लिए, उसमें जो है वो ये एनालिसिस किया जाता है, ये स्टडी किया जाता है कि हम कैंसर सेल को कैसे मार सकते हैं। ठीक है, वो है तो नॉर्मल बॉडी सेल ही, लेकिन बस वो जो है अनकंट्रोल्ड उसकी ग्रोथ हो रही, उसको किल करने के लिए आप डिफरेंट वेज करते हैं, जिसमें कि आप जैसे कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी भी क्या करते हैं कैंसर को किल करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इसमें साइंटिस्ट जो है वो लैब के अंदर जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको डिफरेंट उनको ड्रग्स के साथ ट्रीट करते हैं, डिफरेंट मेथड से ट्रीट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैंसर सेल आया कि ये मर रहा है, डाई हो रहा है, या कि ये फर्दर ग्रो हो रहा है, इसकी क्या रैपिड। तो ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत ही स्लो और मैनुअल है। ठीक है, इट टेक्स डेज एंड डेज के उसको सेल्स को आपने मॉनिटर करना है। एक ड्रग आपने अप्लाई की, अब इवन के देखें आपको एक ड्रग अगर पता भी चल जाती कि ये ड्रग है जो इफेक्टिव है, तो उस ड्रग की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कितनी करनी है, लेस करनी है, मोर करनी है, तो ये एक रिपीटेड प्रोसेस है जो कि आपको अगेन एंड अगेन करना है, और इसके लिए जो है एक छोटे से प्रोसेस में मंथ्स और ईयर्स लग जाते हैं। तो अगर ये सारा प्रोसेस किसी तरह से हम इसको ऑटोमेट कर लें तो उससे ये है कि ये डिस्कवरी जो है वो बहुत फास्टर हो सकती है, जो कि काम हम मैनुअली कर रहे हैं और उसकी एनालिसिस को अगर हम ऑटोमेट कर देते हैं तो ये बहुत इससे जो प्रोसेस है वो डिस्कवरीज का वो फास्टर हो जाएगा।
तो वो जो आपने काम किया है उसी से वो डिस्कवरी तेज हो जाएगी। तो कितना फर्क पड़ा है यानी अगर वो इफेक्टिवली डिप्लॉय किया जाए और 100% सही तरीके से काम करे तो कितना वक्त बचाया जा सकता है?
वी टॉकिंग अबाउट इयर्स, लाइक अभी तो ये हमने टूल्स डेवलप किए हैं, इसको पब्लिश किया है, इसको कम्युनिटी को बताया, ये फ्रीली अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी कैंसर लैब्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं इसको डाउनलोड करेंगे, यूज करेंगे। तो फिर स्टैट्स जो एक्चुअल स्टैट्स हैं वो तो बाद में ही सामने आएंगे, लेकिन अभी जो है हम इमेजिन कर रहे हैं कि इट कैन सेव इयर्स वर्थ ऑफ वर्क।
इनिशियल जो आपने टेस्ट रन किए होंगे उसमें आपको कामयाबी मिली होगी जिसकी बिना पे ही आपने ये दुनिया के लिए सामने रखा है।
जी हाँ, जो हमारे पास डाटा होता है लैब में जो हमने जनरेट किया होता है, हम टूल्स उस पर अप्लाई करते हैं और उसमें जो रिजल्ट्स हैं शो करते हैं, तो वो ये चीज जो है वो पब्लिकेशंस में भी जाती है, कॉन्फ्रेंस में भी। रिसेंटली जो चाइना में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, वहाँ पर भी ये टूल जो प्रेजेंट किया है, तो उसमें ये सारा एनालिसिस जो है हम दूसरे जो साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके सामने रखते हैं और वो फिर इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, वो भी इसको फर्दर यूज करते हैं और फिर वो इस तरह से ये सिलसिला चलता
है। यकीनन अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जिसकी वजह से पब्लिकेशंस में भी छपा है, कॉन्फ्रेंसेस में इसमें जिक्र हुई है, विच इज़ एन एंडोर्समेंट इन इटसेल्फ। बट अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपको किसी किस्म का फीडबैक कहीं से मिला है तो आप बता सकते हैं?
जी, ये फीडबैक हमें जब हम पब्लिकेशंस के लिए भेजते हैं तो ये जो है वो ब्लाइंड पीयर रिव्यूज होते हैं जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं इसी फील्ड में, तो उनकी तरफ से जो हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। अच्छा, इस सेल्फ हमारे इंस्टीट्यूट में जो रिसर्चर्स हैं वो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनका नाम है पूरी दुनिया में कैंसर रिसर्च के अंदर। तो पहले तो उनसे ये प्रूफ लेना कि दिस इज अ गुड अनफ टू गेट पब्लिश्ड एक बड़ी बात होती है, यानी कि ऐसे नहीं होता कि जो भी रिसर्च काम करता है उसको फौरन आप बाहर भेज देंगे। तो पहले जो हमारे डायरेक्टर्स हैं जैसे प्रोफेसर रॉजर रिडल जो है उनका नाम है एक दुनिया के अंदर, तो उनकी भी एक वो स्टैक होती है कि आपको चीज बाहर भेज रहे हैं तो वो कितनी क्रेडिबल है। तो जो हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है वो ही काफी जो है वो काफी स्ट्रिंजेंट होता है। उसके बाद आप उसको भेजते हैं जब जर्नल्स के पास जाता है सारा एनालिसिस और डाटा और एक्चुअल कोड भी, तो वो भी इसको फिर वो डबल चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं सारा, तो उनकी तरफ से भी आपको फीडबैक मिलती है और उनकी तरफ से अगर पॉजिटिव फीडबैक मिले तभी ये पब्लिश होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट जो है वो 3 रिव्यूअर्स और फिर उसके बाद जर्नल का ऑडिटर जो होता है, तो ये सारे लोग उससे एग्री करते हैं कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका एनालिसिस है वो करेक्ट है, वर्थ पब्लिकेशन है, तभी वो इस तरह के जो बड़े जर्नल्स हैं वर्ल्ड रैंकिंग वर्ल्ड लीडर जर्नल्स के अंदर तभी ये डाटा जो है वो पब्लिश होता है।
ये बताइए कि खबरों में भी आपका नाम आया, आपकी टीम का भी जिक्र हुआ, आपके इदारों का भी जिक्र हुआ, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बड़े एहसास की बात थी कि उस कम्युनिटी से ही किसी ऐसे शख्स ने ऐसा काम किया है जिसकी आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। तो कैसा लगा आपको अपने इदारों की भी और एक तरीके से कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए?
जी, बहुत एक अच्छी फीलिंग है कि आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये ह्यूमैनिटी के लिए है और फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट जब आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्मॉलर कम्युनिटी को, तो उसमें भी बहुत आप फील करते हैं कि यार आपने एक पॉजिटिव काम किया है कम्युनिटी के लिए. आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी को, तो वो चीज़ें जो है तो आप एक बहुत अच्छा एक फील करते हैं, आपकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर.
जी आप ये बताइए कि चूंकि आपने अब यहाँ पे जो काम किया है, जिस तरह हमने जिक्र किया, नाम भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आपको देखें, आपसे कुछ सीखना भी चाहें, या शायद आपसे रابطہ भी कभी करना चाहें, या इन जनरल कभी कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसको देखते हैं. तो जब मेरी ऐसे लोगों से बात होती है, मैं चाहता हूँ और मैं कहता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी वो कम्युनिटी हैं जो मजीद बढ़ रही है ऑस्ट्रेलिया में, नए नए लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर स्किल्ड माइग्रेंट्स आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनको अभी कोई मशवरा देना चाहें तो आप क्या कहेंगे?
मैं यही कहूंगा कि जो नए माइग्रेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, ये सारे इसको कंसिडर करें, डाटा साइंस और बायोइनफॉर्मेटिक्स, ये एक बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फील्ड है. तो इसके अंदर जो है वो मुझे पता कि हमारी कम्युनिटी में जैसे ही आते हैं वो बर्डन होता है, प्रेशर होता है, लोग और जॉब्स में लग जाते हैं. तो उसके साथ साथ जो अगर वो ये भी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, कोई इसमें मास्टर्स भी जैसे कि हो रहा है और इसमें पीएचडी भी होती है, हम भी पीएचडी ऑफर कर रहे हैं, मैं भी इसमें पीएचडी सुपरवाइज करता हूँ डाटा साइंस में और बायोइनफॉर्मेटिक्स के फील्ड में. तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारे जो लोग हैं वो इस फील्ड को एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये जो फील्ड है इज द फील्ड ऑफ द फ्यूचर. आइंदा वक्त में हर एक जो इंस्टीट्यूशन है, हर एक अदारा जो है वो बड़ा, उसको एक डाटा साइंटिस्ट चाहिए. और ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये इतनी ज्यादा हर आप मोबाइल ऐप के अंदर अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है. तो अगर आप इसमें कोई नाम बनाना चाहते हैं या इवन आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये एक ऐसे फील्ड है जो कि जिसकी आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा डिमांड है. तो इसको जो है वो अभी लोग एक्सप्लोर करें, और मैं उनको सजेस्ट करता हूँ इसको वो एज ए, अगर उन्होंने पहले प्रॉपरली नहीं पढ़ा हुआ तो उसको वो स्टडी करें. इसमें मास्टर डिग्री भी होती है सिडनी यूनिवर्सिटी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ डाटा साइंस की, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके बाद हम पीएचडी भी डायरेक्टली पीएचडी में भी लेते हैं हम जो लोग ओवरसीज से आते हैं, तो उनके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी है. और उसमें स्कॉलरशिप्स भी होती हैं जो कि अनफ होती हैं, बहुत अच्छी पे होती है उनकी, टैक्स फ्री होती हैं वो.
तो अगर कोई आपसे रابطہ करना चाहे तो किस तरह रابطے में आ सकते हैं आपसे?
जी आप जो लोग इसमें एक्सप्लोर करना चाहें पीएचडी को, वो इस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं matloob.kushi@sydney.edu के ऊपर, और अपना सीवी वो उसमें अटैच करें, और इसमें उन्होंने पहले से क्या किया हुआ है, इस फील्ड से रिलेटेड क्या किया हुआ है वो भी आप उसको एक्सप्लेन करें, तो उसको हम फिर रिस्पॉन्ड करते हैं.
डॉक्टर खुशी, हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया.